हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैतन्य चरितामृत के 29वें दिवसीय सत्र में। हमने अंतलीला प्रारंभ की है और कल हमने पहला अध्याय चर्चा किया था जिसका शीर्षक था रूप गोस्वामी की महाप्रभु को पुरी में द्वितीय भेंट। हमने चर्चा की कि किस प्रकार से सर्वप्रथम एक वृत्तांत सुनाते हैं कविराज गोस्वामी कि हर साल जब उड़ीसा में बंगाल के भक्त जाते थे महाप्रभु से मिलने के लिए रथ यात्रा के समय आदि चातुर्मास के समय रहते थे तो उस समय एक बार जब शिवानंद सेन जा रहे थे तो उनके साथ एक कुत्ता भी पीछे लग जाता है और वो कुत्ते को भी आगे लेते हुए जाते हैं। तो एक दिन अचानक जब कुत्ते को सेवक ने ध्यान नहीं दिया था तो कुत्ता वहां से लापता हो जाता है, लेकिन दुखित अवस्था में सारे भक्त पुनः पूरी पहुंच जाते हैं और अगले दिन जब देखते हैं तो महाप्रभु के कहीं थोड़ा दूर ही वो कुत्ता उन्हें बैठा हुआ दिखाई देता है और महाप्रभु की कृपा से वह वैकुंठ धाम में भी चला जाता है। और किस प्रकार से हमने देखा कि रूप गोस्वामी जब गौड़ में थे तब उनके भाई अनुपम उनका देहांत हो जाता है और उसके पश्चात रूप गोस्वामी अकेले अभी महाप्रभु को मिलने के लिए पुरी की दिशा में प्रस्थान करते हैं और रास्ते में जब एक गांव आता है सत्यभामापुर, वहां पर सत्यभामा देवी उनके सपने में आके बताती है कि आप जो नाटक की रचना कर रहे हैं, जो कृष्ण लीला के ऊपर रूप गोस्वामी नाटक रचना कर रहे थे, तो उसके दो अलग अलग भाग करना, वृंदावन की लीलाओं को अलग से लिखना और द्वारका की लीलाओं को अलग से लिखना। इस प्रकार से जब वो हरिदास ठाकुर की कुटिया में पहुंच जाते हैं जगन्नाथपुरी में, महाप्रभु भी उनका अच्छे से स्वागत करते हैं और जब रथ यात्रा होती है तो महाप्रभु रथ यात्रा के सामने जो नृत्य करते हैं उसमें एक श्लोक जो हमेशा गाया करते थे उसका मनोभाव को जानते हुए रूप गोस्वामी ने भी एक श्लोक की रचना की थी जिसका अर्थ बिल्कुल वैसा ही था। और जब वो अपने छत पे लगा के समुद्र स्नान के लिए गए थे, महाप्रभु चिपके से वहां पे आते हैं और देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि रूप गोस्वामी ने मेरा भाव कैसे पहचान लिया है और फिर रूप को आलिंगन करके वो वहां से उस श्लोक को लेके स्वरूप दामोदर को दिखाते हैं और इस प्रकार से जो है वो जब दूसरी बार आते हैं तो देखते हैं कि रूप गोस्वामी कुछ लिखान कर रहे हैं तो महाप्रभु पूछते हैं कि आप क्या लिख रहे हैं, तो वो बताते हैं कि इस प्रकार से मैं नाटक लिख रहा हूं। और महाप्रभु ने पहले भी उन्हें बताया था कि आप ये नाटक अलग अलग लिखो, कृष्ण को वृंदावन से बाहर लेके जाने का प्रयास मत करो। तो महाप्रभु की आप भी आज्ञा थी और सत्यभामा का भी सपने में आदेश उन्हें मिला हुआ था। तो इस प्रकार से वो दो अलग अलग नाटकों की रचना करते हैं, विदग्ध माधव और ललित माधव। विदग्ध माधव में भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन लीलाओं का वर्णन है और ललित माधव में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। और फिर उसका जो महाप्रभु अक्षर देख के ही प्रसन्न हो जाते हैं और वो श्लोक पढ़ते हैं जब रूप गोस्वामी द्वारा लिखित, तो अतीव प्रसन्न हो जाते हैं। जो हरिनाम की महिमा का गान करता है, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्ध है, कि जब हरिनाम के कृष्ण कृष्णेति वर्ण द्वयी, जब कृष्ण ये दो अक्षर मेरे जिह्वा के ऊपर नृत्य करते हैं तो मुझे ऐसी अपेक्षा है कि मुझे कई सारे मुख होने चाहिए, कई सारे जिह्वाएं होने चाहिए, और कर्ण में प्रवेश करते हैं तो लगता है कि लाखों कर्ण होने चाहिए, और जब ये हरिनाम मेरे हृदय में प्रवेश करता है तो सारे इंद्रियों के ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेता है और स्तब्ध हो जाती है सारी इंद्रियां। और फिर ये श्लोक महाप्रभु सारे भक्तों को सुनाते, हरिदास ठाकुर तो वहां पर उपस्थित थे, राय रामानंद और स्वरूप दामोदर सर्व मट्टाचार्य इनको सब सुनाते हैं, और सारे भक्तों को रूप गोस्वामी को मिलने के लिए आते हैं, और किस प्रकार से रामानंद राय परीक्षा करते हैं और कहते हैं कि जो रूप गोस्वामी का जो ये है काव्य है ये तो अमृत के समान है और सारे जगत का इससे जो है वो कल्याण हो सकता है। और फिर महाप्रभु कुछ आदेश देते हैं रूप गोस्वामी को कि आप भक्ति शास्त्र का प्रचार करो, ग्रंथों की रचना करो, लुप्त तीर्थों का उद्धार करो, इस प्रकार से जो है वो आज्ञा देते हैं, और रूप गोस्वामी फिर पुनः वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। तो अभी आज हम हमारा दूसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है छोटे हरिदास को दंड। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। छोटा हरिदास का वृत्तांत सुनाने से पहले कविराज गोस्वामी और दूसरे एक दो छोटे छोटे वृत्तांत सुना देते हैं, क्योंकि ये सब क्रम में लिखा हुआ है उन्होंने। तो उसमें वो सर्वप्रथम लिखते हैं कि महाप्रभु ने अलग अलग जीवों के ऊपर किन किन प्रकारों से कृपा की। तो जो आदिलीला का दसवां अध्याय है चैतन्य महाप्रभु की विभिन्न शाखाएं, तो उसमें कई सारे भक्तों का वर्णन आता है, और उसमें खास करके ये जो वर्णन आया हुआ है कई भक्तों को ठीक से समझता नहीं है, तो वो वर्णन विस्तार से यहाँ पर है। सर्वलोक उद्धारिते गौर अवतार निस्तारे रहे तुतार त्रिविध प्रकार। सारे जगत का निस्तार करने के लिए महाप्रभु अवतरित हुए और तीन प्रकार से उन्होंने लोगों के ऊपर कृपा की। कौन से है तीन प्रकार? साक्षात दर्शन आर योग्य भक्त जीवे आवेश करे कहाँ कहाँ आविर्भावे। एक साक्षात दर्शन, दूसरा है आवेश, और तीसरा है आविर्भाव। साक्षात दर्शन को महाप्रभु ने सभी भक्तों को किया, जिन जिन्होंने साक्षात दर्शन किया वो साक्षात दर्शन हो गया। दूसरा है आवेश, जैसे नकुल ब्रह्मचारी, किन किन भक्तों में जो योग्य जीव है उनके उनके हृदय में महाप्रभु आवेश अपनी शक्ति संचारित करते थे और उनके द्वारा भक्ति का प्रचार किया करते थे। और तीसरा है आविर्भाव, मतलब महाप्रभु वहां पर उपस्थित तो है नहीं लेकिन फिर भी वो अपनी शक्ति से वहां पर प्रकट हो जाते थे और उन्हें उसकी अनुभूति भी होती थी, इसे कहते हैं आविर्भाव। और कविराज गोस्वामी इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम वो कहते हैं कि साक्षात दर्शन के बारे में आप सुनिए। साक्षात दर्शन सब जगत तारीला एक बार ये देखिला से कृतार्थ होइला। साक्षात दर्शन महाप्रभु ने कई सारे भक्तों को कराया। जो बंगाल से सारे भक्त जगन्नाथपुरी में आया करते थे, महाप्रभु का दर्शन उन्हें मिला। इतना ही नहीं, कई सारे देवी देवता किन्नर ये सब लोग मनुष्य रूप धारण करके महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आते थे। तो जिन लोगों ने साक्षात इस प्रकार से महाप्रभु का दर्शन प्राप्त किया उन्होंने अपने जीवन को कृतार्थ बनाया। तो ये है उनका साक्षात दर्शन इस रूप में कृपा। दूसरा है आवेश। तो महाप्रभु योग्य भक्त जो उन्नत भक्त थे उनको चुनते थे और उनमें शक्ति संचारित कर देते थे और उनमें आवेशित हो जाके वो कृष्ण भक्ति का प्रचार किया करते थे। सी जीवनी जो भक्ति करे न प्रकाशे ताहर दर्शन वैष्णव हय सर्व देशे। उस जीव में महाप्रभु अपने स्वयं की भक्ति का प्रकाश करते थे और उसके दर्शन से सारा देश सारा गांव जो है वो कृष्ण भक्त बन जाता था। इस प्रकार से एक दृष्टांत देते हुए कविराज गोस्वामी सुनाते हैं कि एक अंबुया प्रांत एक जगह है, वहां पर एक नकुल ब्रह्मचारी रहा करते थे। वो बहुत ही प्रगत भक्त थे महाप्रभु के, और एक बार महाप्रभु ने उनके अंदर उनके हृदय में अपना आवेश किया था। और किस प्रकार से आवेश हुआ था? ग्रहग्रस्त पाय नकुल प्रेमाविष्ट हैया हासी कांदे नाचे गाय उन्मत्त हैया। जिस प्रकार से कोई ग्रास लेता है, जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं ना इसके पीछे सड़े साथी लग गई है, मतलब कोई ग्रह इसके पीछे लग गया है, या फिर किसी व्यक्ति के अंदर भूत संचार हो जाता है तो वो कुछ अलग तरीके से बर्ताव करना प्रारंभ कर देता है। उसी प्रकार से ये आवेश का अर्थ है कि महाप्रभु मानो उस शरीर के अंदर प्रवेश कर लेते थे। ग्रहग्रस्त पराय नकुल प्रेमाविष्ट हैया प्रेमाविष्ट हो जाते थे और हंसे कांदे नाचे गाए उन्मत्त हैया और हंसते थे गाते थे नाचने लगते थे और उनका जो शरीर है वो मानो चैतन्य महाप्रभु की दिव्य कांति की भांति उनका भी शरीर जो है वो चमकने लगता था। सारे बंगाल से लोग आए वहां पर उनका दर्शन पाते थे और वो भी कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने लगते थे। जो भी उन्हें देखता वो कृष्ण प्रेम से प्रभावित हो जाता था और उनमें भी कृष्ण भक्ति का संचार हो जाता था। तो इस प्रकार से जिन लोगों को महाप्रभु नहीं मिल पाते थे ऐसे लोग जो नकुल ब्रह्मचारी को मिले वो लोग भी उनका बेड़ा पार हो जाता था। वहां पर उसी समय शिवानंद सेन बंगाल में उपस्थित थे। उनके हृदय मन में थोड़ा संशय आ गया कि क्या यह सही है, नकुल के हृदय में महाप्रभु का आवेश हुआ है या नहीं है या पता नहीं क्या है, लेकिन यदि नकुल ब्रह्मचारी मुझे स्वयं बुला लेगा और मेरा जो इष्ट देव का मंत्र है वो मुझे बता देगा तो मैं जान जाऊंगा कि वास्तव में नकुल ब्रह्मचारी में महाप्रभु का आवेश हुआ है। और इस प्रकार से वो सोच रहे थे। वो जाते हैं और थोड़ा दूर ही खड़ा रहते हैं नकुल ब्रह्मचारी से, और अभी ऐसा प्रेम का आवेश है, इतने सारे भक्त, इतनी भीड़ वहां पर, हजारों लोग दर्शन करने के लिए नकुल ब्रह्मचारी का, और आवेश में नकुल ब्रह्मचारी अचानक वहां पर कहता है कि आवेश ब्रह्मचारी कहे शिवानंद आछे दूरे जन दुई चारिया बोलाहता हारे। दो चार लोग जाके जरा यहाँ पर शिवानंद है जाके बुला के लाओ। तो वहां से भीड़ से चार पांच लोग जाते हैं, शिवानंद 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 कौन है कहाँ है, जाके जाके पुकारते हैं और शिवानंद को कहते कि आपको नकुल ब्रह्मचारी बुला रहा है, चलिए चलिए जल्दी। शिवानंद अचंभित होके चलो चलो चलो, शिवानंद भी आ जाते हैं और उनके चरणों में जो है वो बैठ जाते हैं। तो जैसे ही चरणों में बैठ जाते हैं नकुल ब्रह्मचारी कहते हैं कि मुझे पता है आपके मन में जो है वो संशय उत्पन्न हुआ है, लेकिन आप संशय बिल्कुल मत कीजिए। गौर गोपाल मंत्र तुमार चारी अक्षर अविश्वास छाड़े छे करिया छे अंतर। आप अविश्वास को छोड़ दो और आपका जो है वो गौर गोपाल ये चार अक्षरी मंत्र है आपके इष्ट देव का। और जैसे ही शिवानंद सेन सुनते हैं कि अरे मेरे इष्ट देव का मंत्र इन्होंने समझ लिया है, तो वहां पर उन्हें शरणागत हो जाते हैं और उनकी सेवा प्रारंभ कर देते हैं। तो यह है आवेश का विस्तार से वर्णन कविराज गोस्वामी ने किया है। और अगला है आविर्भाव। आविर्भाव का अर्थ है कि महाप्रभु शारीरिक रूप से वहां पर उपस्थित तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर वो कुछ लीला या जो अपने भक्तों का भाव है उसके साथ आदान प्रदान करने के लिए वहां पे प्रकट हो जाते हैं और वो भक्त उन्हें देख पाते हैं, उनको महसूस कर पाते हैं, उसे कहते हैं आविर्भाव। और खास करके ये चार जगह महाप्रभु का आविर्भाव हुआ करता था। शचिर मंदिरे आर नित्यानंद नर्तने श्रीवास कीर्तने आर राघव भवने यही चारी ठाई प्रभुर सदा आविर्भाव। इस प्रकार से ये चार जगह हमेशा आविर्भाव हुआ करता था। शचिर मंदिर है, सर्वप्रथम जब शची माता भगवान को भोग लगाती थी तो उस समय महाप्रभु प्रकट हो जाते थे। शचिर मंदिर आर नित्यानंद नर्तने, जहां पर नित्यानंद प्रभु नर्तन किया करते थे, नृत्य करते थे प्रेमावेश में, वहां पर महाप्रभु स्वयं उपस्थित होते थे। तीसरा श्रीवास कीर्तने, जहां पर श्रीवास ठाकुर के यहाँ पर कीर्तन होता था उस समय भी महाप्रभु उपस्थित होते थे। और राघवेर भवने, राघव पंडित के घर पर भी महाप्रभु जो है वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए प्रकट हो जाते थे। तो इन चार स्थलों पर महाप्रभु का आविर्भाव हमेशा रहा करता था। अभी कविराज गोस्वामी सुनाते हैं कि ऐसा ही आविर्भाव नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी, उनमें भी जो है वो उन्होंने इस प्रकार का आविर्भाव का अनुभव किया। तो उसका वृत्तांत सुनाते हैं। पुनः शिवानंद सेन से भी संबंधित है ये। शिवानंद सेन इनका एक भांजा था जिसका नाम था श्रीकांत सेन। तो ये श्रीकांत सेन एक दफा उन्हें इच्छा हो गई कि मैं महाप्रभु का अकेला दर्शन करूंगा, तो वो अकेले पूरी गए थे और दो महीने तक लगभग महाप्रभु के संग में वहां पर रहे थे। तो जब वो पुनः बंगाल के लिए निकल पड़े, महाप्रभु ने उन्हें बताया कि सारे बंगाल के भक्तों को बताओ कि इस साल आपको पुरी में आने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं जो है वो बंगाल में आ जाऊंगा, सभी भक्तों को मिलूंगा, पौष महीने में मैं आने वाला हूं, तो उनसे मैं मिलूंगा, सारे भक्तों को बता दो। तो श्रीकांत सेन आ जाते हैं और शिवानंद सेन अद्वैताचार्य सबसे बता दे है कि इस प्रकार से महाप्रभु इस साल आने वाले हैं पौष महीने में शिवानंद सेन इनके घर पर। तो अभी जगदानंद शिवानंद सेन सारी तैयारी करते हैं कि पौष महीना जैसे आ जाता है कि महाप्रभु के स्वागत की सारी तैयारी वो धूमधाम से करते हैं। तो सारी तैयारी की जाती है और जगदानंद शिवानंद सेन हमेशा उत्सुकता से राह देख रहे होते हैं, सुबह से शाम तक वो प्रतीक्षा करते हैं, आज आएंगे महाप्रभु, आज आएंगे महाप्रभु। इस प्रकार से पौष महीने की समाप्ति भी हो जाती है लेकिन महाप्रभु वहां पर नहीं जाते हैं, तो वो बहुत दुखित हो जाते हैं। ऐ मत मास गेला गोसाई ना आईला जगदानंद शिवानंद दुखित होइला, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो एक दिन अचानक नरसिम्हानंद, जिनका और एक नाम था प्रद्युम्न, इनका नाम वास्तव में प्रद्युम्न ब्रह्मचारी था लेकिन वो नरसिम्हा देव के बहुत बड़े उपासक थे इसलिए उन्हें नरसिम्हानंद नाम से भी बोला जाता है। तो एक दिन नरसिम्हानंद या प्रद्युम्न वहां पर आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि आप सब लोग इतने दुखी क्यों हैं? तो शिवानंद सेन कहते हैं कि देखो ना, महाप्रभु ने वचन दिया था आप आएंगे लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। नरसिम्हानंद कहते हैं कि अच्छा नहीं आए हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये 3 दिन तक राह देखो, 3रे दिन में मैं महाप्रभु को यहाँ पे उपस्थित करा दूंगा। तो अभी सब लोग कहे ठीक है, नरसिम्हानंद कहते हैं कि सारी सामग्री एकत्रित करो, भोजन पकाने का व्यवस्था करो, मैं स्वयं भोजन बनाऊंगा, महाप्रभु को 3रे दिन आ जाऊंगा। फिर उस प्रकार से शिवानंद सेन आदि सब सामग्री उन्हें प्रदान करते हैं और सारी सामग्री प्रदान करने के पश्चात सारा भोजन बनाते हैं नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी और 3 अलग अलग भोग लगाते हैं, एक जगन्नाथ जी के लिए, एक चैतन्य महाप्रभु के लिए और उनके आराध्य देव नरसिम्हा देव, इन तीनों के लिए अलग अलग वो भोग लगाते हैं और ध्यान करने बैठ जाते हैं। और ध्यान में उन्हें देखते हैं कि महाप्रभु आ गए और महाप्रभु ने 3 थालियों का भोग खा लिया और जब महाप्रभु ने खा लिया तो वो प्रेमाविष्ट होकर उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं कि महाप्रभु आए, महाप्रभु ने सब स्वीकार किया लेकिन हाय 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 क्या हो गया, 3 भोग खा लिए, 3 अरे आपका अकेले का खा लेते, ये जगन्नाथ और नरसिम्हा इनका क्यों खाया? अच्छा जगन्नाथ जी का खाया वो भी समझ सकते है, जगन्नाथ है तुम्हारे एक क्या खाओ तार भोग नरसिंह मेरे भोग के ने करो उपयोग। अरे जगन्नाथ और आप एक है समझ सकते हैं लेकिन नरसिम्हादेव का भोग क्यों आपने खा लिया? उनका तो उनका छोड़ने चाहे, बेचारे नरसिम्हादेव को उपवास करना पड़ेगा अभी। तो इस प्रकार से हाय हाय नरसिम्हा ब्रह्मचारी चिल्लाता है। तो नरसिम्हा ब्रह्मचारी वास्तव में आनंद था लेकिन उनकी निराशा केवल एक कारण से थी कि उनके इष्ट देव का उपवास अभी करना पड़ रहा था। तो इस प्रकार से महाप्रभु एक्चुअली प्रद्युम्न ब्रह्मचारी को ये दिखाना चाहते थे कि जगन्नाथ नरसिम्हादेव और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ये तीनों एक ही है। और इस प्रकार से जो है वो आविर्भाव उन्होंने किया था। महाप्रभु भोजन करके पानीहाटी राघव पंडित के घर पे चले जाते हैं और यहाँ पे शिवानंद सेन नकुल सॉरी नरसिम्हानंद से कहते हैं कि आप असंतोष क्यों जता रहे हो, आप इतना गुस्सा मत दिखाइए, देखो ना 3 जनार भोगते हो, अकेला खाइला जगन्नाथ नरसिम्ह उपासी रहिला, जगन्नाथ और नरसिम्हा खाली उपवास रह गए, इनको उपवास करना पड़ा, अकेले महाप्रभु सब खाली है। तो फिर वो कहते हैं कि कुछ चिंता मत करो, लेकिन शिवानंद सेन के मन में संशय आ जाता है क्या सही में महाप्रभु आए रहेंगे? तो फिर और सामग्री ला देते हैं, भाई खिलाओ तुम्हारे इष्ट देव को भी, भाई भोग खिलाओ। तो फिर वो सारा पुनः खाना बनाते है और नरसिम्हा देव और जगन्नाथ इनको भोजन लगा देते है। अगले साल जब सारे भक्त जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के दर्शन के लिए जाते हैं उस समय महाप्रभु नरसिम्हानंद का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि पिछले साल पौष महीने में मैं आया था, नरसिम्हानंद ने बहुत अच्छा भोजन बनाया था और कई सारे व्यंजन, सारे व्यंजनों के नाम भी सुनाते हैं। तब जाके शिवानंद सेन को विश्वास हो जाता है कि हाँ सही में महाप्रभु आविर्भूत हुए थे वहां पर। तो ये वृत्तांत सुनाने के पश्चात अब इसके आगे छोटा हरिदास का वृत्तांत कविराज गोस्वामी प्रारंभ करते हैं। तो बताते हैं जगन्नाथपुरी में एक भगवान के बहुत बड़े विद्वान भक्त थे जिनका नाम था भगवान आचार्य, बहुत विद्वान बहुत बड़े उन्नत भक्त थे भगवान आचार्य। और ये महाप्रभु को कभी कभी अपने घर पे प्रसाद के लिए बुलाते थे, कई सारे विभिन्न प्रकार के भात, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, तरकारी, इस प्रकार से वो महाप्रभु को संतुष्ट करते थे अपने यहां पर प्रसाद के लिए बुलाकर। उनके एक भाई थे गोपाल भट्टाचार्य नाम तार छोटा भाई, काशी ते वेदांत पड़ी गेला तार ठाई। गोपाल भट्टाचार्य इनका एक भाई था जो काशी से वेदांत पढ़ के आया था और अभी मायावादी दार्शनिक बन गया था, तो वो अभी भगवान आचार्य के घर पे आए हुआ था। महाप्रभु जब मिलते हैं, महाप्रभु मिलते हैं लेकिन इतने प्रसन्न नहीं थे क्योंकि वो मायावादी दार्शनिक था। आचार्य संबंधी बाह्य करे प्रीत्याभास, कृष्ण भक्ति बिना प्रभुर ना हो उल्लास। कृष्ण भक्त नहीं है तो महाप्रभु को मिलकर इतना उल्लास नहीं होता था साधारणतः, क्योंकि मायावादी दर्शक था तो अप्रसन्न थे, लेकिन भगवान आचार्य से संबंध था इसलिए बाहर से प्रत्याभास, बाहर से प्रीति जता रहे थे। तो भगवान आचार्य स्वरूप दामोदर को कहते हैं कि आप आके मेरे भाई को मिलिए, उनसे थोड़ा चर्चा कीजिए। स्वरूप दामोदर कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपकी शायद बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, गोपाल के संग में रहकर, आपके भाई के संग में रहकर मायावादी को हम लोग बिल्कुल नहीं सुनते। वैष्णव हैया ये बा शारीरक भाष्य सुने, सेव्य सेवक भाव छाड़ी अपनारे ईश्वर माने। हमारा सेव्य और सेवक का जो भाव है वो चला जाता है और खुद को ईश्वर मान लेते हैं, इसलिए मायावाद भाष्य कभी भक्तों को नहीं सुनना चाहिए। कितना भी महाभागवत व्यक्ति क्यों न हो, उसका भी चित्त भ्रमित हो सकता है। महाप्रभु ने स्वयं कहा है मायावादी भाष्य सुनने ले होय सर्वनाश, इसलिए नहीं सुनना चाहिए। फिर ये जो वेद मायावाद दर्शन है, ये जो है वो जीव को काल्पनिक मानता है, और जो भगवान है उनकी भगवत्ता ईश्वर है उनको माया के अधीन मानने के लिए बाध्य कर देता है हमें, इसलिए इसे नहीं सुनना चाहिए। तो भगवान आचार्य जो है थोड़ा लज्जित हो जाते हैं और मौन रखते हैं, और वहां से फिर वो बाद में चल के उनका जो भाई था गोपाल भट्टाचार्य उसे अपने दूसरे गांव में भेज देते हैं कि तू चला जा भाई, तू यहां मत रहे, और उसे भेज देते हैं दूसरी और जगह। भगवान आचार्य एक दिन महाप्रभु को प्रसाद के लिए आमंत्रित करते हैं। एक दिन आचार्य प्रभु रे कैला निमंत्रण, घरे भात करी करे विविध व्यंजन। भात बनाया प्रमुख रूप से, बंगाल के लोग भात बहुत पसंद करते हैं, पुरी के भी लोग बहुत भात पसंद करते हैं। तो घरे भात करी करे विविध व्यंजन, और उसके साथ साथ कई सारे व्यंजन भी उन्होंने बनाए थे। चैतन्य महाप्रभु का एक कीर्तनीय भक्त था जो महाप्रभु के लिए कीर्तन किया करता था, उसका नाम था छोटा हरिदास। तो उन्होंने छोटा हरिदास को बुलाया और कहा कि जाओ जाके जो शिखी महिती उनकी भगिनी है, उनकी बहन है माधवी देवी, उनसे मेरा नाम बोलकर थोड़े चावल लेके आ जाओ। तो छोटा हरिदास जाते हैं और चावल लेके आते हैं। तो कविराज गोस्वामी पहले बताते हैं कि ये शिखी महिती और ये कौन है। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं सबसे पहले वो जो माधवी देवी जिनके पास भात मांगने के लिए छोटा हरिदास गए थे उनका वर्णन करते हैं। माहितीर भगिनी से नाम माधवी देवी वृद्धा तपस्विनी आर परमा वैष्णवी। कौन थी ये शिकी माहिती की ये भगिनी थी माधवी देवी, वो वृद्धा थी, तपस्विनी थी और परम वैष्णवी, ये तीन गुण उनके अंदर थे। चैतन्य महाप्रभु के निजी पार्षदों में ये इस प्रकार से बताया जाता है कि ये 3.5 पार्षद 3.5 ये घनिष्ठ भक्त थे महाप्रभु के। कौन कौन थे ये 3.5 घनिष्ठ भक्त और ये 3.5 क्यों गणना की जाती है। स्वरूप गोसाई आर राय रामानंद शिखी माहिती तीन तार भगिनी अर्धजन। स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, शिखी माहिती, ये हो गए तीन, और उनकी भगिनी थी माधवी देवी, उनको उनकी आधी गणना करते हैं। तो इसलिए 3.5 भक्त जो है वो महाप्रभु के निजी घनिष्ठ पार्षद माने जाते हैं। तो महाप्रभु उन्हें जो माधवी देवी थी उनको श्रीमती राधारानी का ही पूर्व संगिनी मानते थे। तो महाप्रभु आ जाते हैं भगवान आचार्य के घर पे प्रसाद लेने के लिए। महाप्रभु प्रसाद पाते हैं और बहुत ही गुणगान करते हैं, वाह कितना स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हुए है, क्या सुंदर भात बनाया हुआ है, इसके तंदूल कहाँ से लाए। और महाप्रभु जब पूछते हैं तो भगवान आचार्य बताते हैं वो अपनी माधवी देवी से मंगाए हैं। अच्छा कौन गया था लाने के लिए, महाप्रभु पूछते हैं। वही अपना कीर्तनिया छोटा हरिदास, उसको भेजा था, वो लेके आया। महाप्रभु पूछते हैं अच्छा 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 छोटा हरिदास लाया क्या। महाप्रभु खा लेते हैं, कुछ बोलते नहीं है, और पुनः भोजन का प्रशंसा करके चले जाते हैं अपने घर। और अपने घर पे क्रुद्ध भाव होकर गोविंदो को बुलाते हैं। आजी हईते एई मोर आज्ञा पालिबा, छोटा हरिदास यहाँ आसीते ना दिबा। मेरी आज्ञा का पालन करो और आज से छोटा हरिदास को यहां पे आने के लिए मना कर दो, मैं उसका त्याग कर रहा हूं। किसी को समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, क्यों महाप्रभु ने ऐसा किया, कोई जान नहीं पाया। जब हरिदास छोटा हरिदास ने सुना, छोटा हरिदास भी अचंभित हो जाते हैं और छोटा हरिदास दुखी हो जाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि क्यों महाप्रभु ने ऐसा किया। महाप्रभु को ऐसा पूछने की किसी में हिम्मत भी नहीं थी। 3 दिन तक छोटा हरिदास बेचारा उपवास करता है और सारे भक्तों को जब वार्ता समझ में आ जाती है, सारे भक्त स्वरूप दामोदर आदि महाप्रभु के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या अपराध हुआ उसका, क्यों आपने उनका त्याग कर दिया है, बेचारा 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्रभु कहे वैरागी करे प्रकृति संभाषण देखी ते ना पारो आमे ताहर वदन। यदि कोई व्यक्ति संन्यास या वैराग्य का पालन कर रहा है और स्त्रियों के साथ इस प्रकार से घुल मिलकर बात कर रहा है तो उसका चेहरा देखने का भी मेरा मन नहीं करता। दुर्वर इंद्रिय करे विषय ग्रहण दारवी प्रकृति हरे मुनेरपि मन। व्यक्ति की इंद्रियां जो है वो बहुत प्रबल होती है और वो अपने विषयों के प्रति हमेशा आसक्त रहती है और इस प्रकार से यदि काष्ठेर पुतली दारवी प्रकृति लकड़ी का भी यदि स्त्री का कोई रूप देख लेता है तो बड़े बड़े मुनि का भी जो है वो मन भ्रमित हो सकता है और उसमें वो आसक्त हो सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद का 19वां अध्याय का श्लोक महाप्रभु उद्धृत करते हैं। मात्रा स्वस्त्राधुहित्रा वा नाविविक्तो आसु नो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। किसी व्यक्ति को चाहिए कि अपनी मात्रा स्वस्त्रा अपनी बहन और दुहित्रा वा अपनी लड़की, तो अपनी माता अपनी लड़की और अपनी बहन भी क्यों न हो, उस व्यक्ति ने उनके साथ अकेले कभी नहीं रहना चाहिए। क्यों? बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। हमारी इंद्रिया इतनी बलवान है कि वो किसी कोई बड़ा मुनि भी क्यों न हो तो भी वो उसे पतन के रास्ते पर लेके आ सकती है। इसलिए जो है वो ऐसा कहते महाप्रभु और अपने घर के अंदर चले जाते हैं और क्रोध भाव महाप्रभु ने जताया था इसलिए सारे भक्त चिड़ी चुप हर कोई मौन रख के वहां से जो है वो चले जाते हैं। अगले दिन पुनः सारे भक्त स्वरूप दामोदर आदि सब महाप्रभु के पास आ जाते हैं और महाप्रभु से पुनः छोटे हरिदास के लिए विनती करते हैं कि महाप्रभु उसका तो कितना छोटा अपराध है, आप क्षमा क्यों नहीं कर देते, और वास्तव में क्या अपराध था उसका, वो केवल भात मांगने के लिए गया था, भात मांग कर लेके आया होगा और वो भी माधवी देवी इतनी वृद्धा तपस्विनी परमा वैष्णवी, लेकिन फिर भी ये सारे भक्त आ जाते हैं और छोटा हरिदास की तरफ से महाप्रभु को विनती करते हैं। अल्प अपराध प्रभु करह प्रसाद एबे शिक्षा है ना कोरे अपराध। महाप्रभु आप उसके ऊपर कृपा दिखाइए, एबे शिक्षा है ला, इतनी शिक्षा बस हो गई, 3 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं है, इसके आगे चल के वो ऐसा कभी नहीं करेगा, आप कृपया अपनी कृपा उसे दे दीजिए। महाप्रभु अभी भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। प्रभु कहे मोर वश नहे मोर मन प्रकृति संभाषी वैरागी ना करे दर्शन। मेरा मन मेरे ही वश में नहीं है। महाप्रभु कहते हैं कि यदि कोई सन्यासी या वैरागी है और इस प्रकार से नारियों के साथ संपर्क बनाए रख रहा है तो उसका दर्शन भी मैं कभी नहीं कर सकता। आप सब लोग जो है वो अपने अपने घर चले जाओ और ये व्यर्थ बात अभी छोड़ दो और इसके पुनः आगे चल के वापस यदि छोटा हरिदास का विषय लेके मेरे पास आ गए तो मैं यहां से चला जाऊंगा और आप बिल्कुल कभी मुझे यहां पर नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार से क्रुद्ध हो गए महाप्रभु, सारे भक्त वहां से कान बंद कर मुख बंद करके शांत वहां से चले जाते हैं और सारे भक्त पहुंच जाते हैं अभी परमानंदपुरी के पास, क्योंकि परमानंदपुरु महाप्रभु से जो है वो थोड़े उम्र में भी बड़े हैं, पहले से सन्यासी है और वो भी सन्यास धर्म को अच्छे से जानते हैं। तो अभी परमानंदपुरी के पास सारे भक्त पहुंचने लगते हैं और उन्हें विनती करते कि आप थोड़ा महाप्रभु को थोड़ा विनती कीजिए। अगले दिन परमानंदपुरी महाप्रभु के पास पहुंच जाते हैं। महाप्रभु बहुत आदर करके उनको बैठाते हैं और पूछते हैं कि कहिए पुरीपाद कैसे आना हुआ। परमानंदपुरी कहते हैं कि कुछ विशेष नहीं, लेकिन ये छोटा हरिदास ये उसका उसके ऊपर आप कृपा नहीं जता रहे, ऐसा सुना है, आपकी कृपा नहीं हो रही है। महाप्रभु पुनः क्रुद्ध हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं वहां पर। महाप्रभु कहते हैं कि देखिए परमानंदपुरी, आप सारे वचनों के लेके यहाँ पर रहिए, मैं चला। गोविंद चलो पैक करो सब लगेज, हमें चलना है, हम जाएंगे अलालनाथ। अलालनाथ निकल पड़ते, निकल गए महाप्रभु घर से बाहर और गोविंद पीछे पीछे भाग रहा है। फिर परमानंदपुरी वहां से उड़ जाते हैं और महाप्रभु के पैर छूते, महाप्रभु ऐसा मत कीजिए, कृपया क्षमा करना, ऐसा 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 मत कीजिए। फिर किसी न किसी प्रकार से परमानंदपुरी ने मनाया और महाप्रभु से कहते हैं कि आप तो स्वतंत्र ईश्वर है, आप जो चाहे कर सकते हैं, हम कौन होते हैं आपको बताने वाले, इसके आगे मैं आपको ऐसा कभी नहीं कहूंगा। और महाप्रभु को वो घर में बुला के लेके आते हैं। तो महाप्रभु अभी वहां पर आए हुए हैं और परमानंदपुरी कहते हैं, लोक हित लागी तोमार सब व्यवहार, आमी सब ना जानी गंभीर हृदय तोमार। लोगों के हित के लिए आपका जो है वो व्यवहार है, आम सब ना जानी गंभीर हृदय तोमार, आपका हृदय बहुत गंभीर है, हम तो नहीं समझ सकते। परमानंदपुरी घर लौट जाते हैं और सारे भक्तों को बताते हैं कि ये ऐसा वृत्तांत हुआ, इसके बाद कभी भी चेष्टा नहीं करना महाप्रभु के साथ सामने इसका विषय निकालने की। अभी सारे भक्त जो है सुर दामोदर आदि जाते हैं छोटा हरिदास के पास और उसको समझाते हैं कि भाई अभी बहुत हो गया, तू तेरा हट छोड़ दे, खाना पीना बंद करके रखा है, ऐसा मत कर, महाप्रभु थोड़ा रुष्ट है आपसे, लेकिन आप खाना पीना शुरू कर दो, स्नान के लिए चले जाओ और महाप्रभु का दूर से तो दर्शन मिलता रहेगा आपको, आप चिंता मत करो, धीरे धीरे जब क्रोध शांत हो जाएगा, महाप्रभु की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी। तो फिर वो उनकी बात सुन लेता है, नहाने चला जाता है और भोजन कर लेता है और दूर से भी वो महाप्रभु का दर्शन किया करता था। प्रभु यदि यान जगन्नाथ दर्शने, दूरे रही हरिदास करे न दर्शने। महाप्रभु इस प्रकार से जब जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाया करते थे, छोटा हरिदास दूर से ही महाप्रभु को देखा करता था और चैतन्य महाप्रभु की लीला को कौन समझ सकता है। महाप्रभु कृपा सिंधु के पारे भू जीते, प्रिय भक्त दंड करें धर्म भू जाते। महाप्रभु जो कृपा के सिंधु है, लेकिन कौन समझ सकता है उनकी कृपा इतनी अपार है। अपने प्रिय भक्तों को दंड करके, दंड देके वो सारे भक्तों को धर्म की स्थापना करा रहे थे। देखी त्रास उपजिल सब भक्त गणे, स्वप्ने हत छाड़िल सब स्त्री संभाषणे। वहां के उपस्थित पुरी में जितने सारे भक्तगण थे उनको मानो एक अभी डर लगने लगा, स्वप्न में भी कोई किसी स्त्री के साथ बात नहीं करता था। इस प्रकार से सारे अभी घबराए हुए थे कि महाप्रभु हमें भी प्रताड़ित न कर दे। इस प्रकार से एक साल हो जाता है लेकिन महाप्रभु के कृपा कभी मिली नहीं छोटा हरिदास को। एक साल हो जाने के पश्चात एक रात के समय छोटा हरिदास जो है वो किसी को बिल्कुल कुछ बिना बताए प्रयाग भाग जाता है और प्रयाग में त्रिवेणी संगम में वो अपने देह को एक संकल्प कर लेता है कि मैं महाप्रभु के चरणों की प्रति प्रीति रखता हूँ और उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा रखता हूँ, और नदी में प्रवेश कर देता है और अपना आत्म समर्पण कर देता है और देह त्याग कर देता है। उसी समय उसे एक दिव्य देह की प्राप्ति हो जाती है और उस दिव्य देह के स्वरूप में आके अभी उन्हें गंधर्व रूप मिल जाता है और उस गंधर्व के रूप में भी आके वो महाप्रभु को अपना गान सुनाते हैं और महाप्रभु उस गंधर्व के रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं। गंधर्व देह गान करे न अंतर धाने, रात्रे प्रभु सुनाई गीत अन्य ना ही जाने। रात के समय आके महाप्रभु को वो गंधर्व रूप में गान किया करते थे लेकिन बाकी भक्तों को यह समझ में नहीं आता था। ये चित्र आपने देखा होगा, ये जो आदिलीला के पहले इसके ऊपर दिया गया है कि किस प्रकार से गंधर्व रूप में छोटा हरिदास आते थे और महाप्रभु को अपने गान सुनाया करते थे। हमारे मंदिर में भी ये चित्र लगाया गया है। आप यदि अवगत है हमारे अपने इस्कॉन के नासिक मंदिर श्री राधा मदन गोपाल मंदिर में, मदन गोपाल जी की ओर से दीवार की ओर जो भी सारे तस्वीरें हैं वो कृष्ण लीला से संबंध रखती है और श्रीमती राधारानी के साइड में जो भी दीवारें हैं वहां पर जो भी तस्वीरें हैं वो चैतन्य लीला से संबंध रखती है, फिर वो छोटी तस्वीरें हो या बड़ी तस्वीरें क्यों ना हो। तो इस प्रकार से वो जो छोटी तस्वीर है उसमें छोटा हरिदास का ही चित्र इंगित किया गया है। चैतन्य लीला सुनने के पश्चात सारी तस्वीरों को जब आप सब लोग मंदिर में आएंगे तब आप देख सकते हैं और सारी तस्वीरों से अवगत हो जाएंगे। ये आदि लीला का है, ये मध्य लीला का है, ये अंत्य लीला का, इस अध्याय का ये तस्वीर, ये लीला दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से चित्रों से भी हम लोग लीलाओं को समझ सकते हैं। तो अन्य कोई समझ में नहीं पाता था, लेकिन केवल महाप्रभु गंधर्व के रूप में जो छोटा हरिदास आया करता था उनकी सेवा को स्वीकार करते थे। एक दिन ऐसे ही चलते चलते महाप्रभु भक्तों को पूछते हैं, कहाँ है हरिदास, बुलाओ उसे। सारे भक्त बताते हैं महाप्रभु को, महाप्रभु हो क्या गया, जब एक साल हो गया था तो उसके उपरांत तुरंत वो कहीं चला गया और हम प्रयाग की ओर चला गया, ऐसा हमने सुना है, लेकिन कोई जानता नहीं है कहाँ गया है और उसका क्या हुआ है। महाप्रभु मिंद स्मित करते हैं, हंसते हैं और आगे चले जाते हैं। सारे भक्त अचंभित होकर देखते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। एक दिन सारे भक्त जब समुद्र स्नान के लिए गए थे, स्वरूप दामोदर, गोविंद, ये सब भक्त उन साथ में थे, महाप्रभु नहीं थे। सारे भक्त जब समुद्र स्नान के लिए जाते हैं, छोटा हरिदास जैसा ही आवाज गा रहा है, कोई कृष्ण कीर्तन कर रहा है, उन्हें सुनाई देता है। सब लोग देखते हैं, कहाँ है छोटा हरिदास, आया है क्या। लेकिन देखते हैं तो कोई कहीं पर नहीं है छोटा हरिदास। तो उन्हें समझ में आता है कि शायद कोई भूतात्मा के रूप में उन्हें आवाज सुनाई देता है। वैसा ही आवाज, छोटा हरिदास का आवाज है, आवाज तो वही लग रहा है लेकिन रूप दिखाई नहीं दे रहा है। तब गोविंद तर्क लगाते हैं और गोविंद कहते हैं, शायद उसने विष लेके आत्महत्या की है छोटे हरिदास ने, इसलिए शायद वो ब्रह्म राक्षस बन गया है अभी। स्वरूप दामोदर कहते हैं, छे, ऐसा कभी हो सकता है, इतना बड़ा भक्त था छोटा हरिदास, आजन्म कृष्ण कीर्तन प्रभु र सेवन, प्रभु कृपा पात्र आर क्षेत्र र मरण, दुर्गति न हो यतार सदगति से होए, उसके दुर्गति कभी नहीं हो सकती, इतने महाप्रभु के लिए आजन्म कीर्तन किया है, प्रभु का सेवन किया है, प्रभु का कृपा का पात्र है और अच्छे धाम में उसकी मरण आई होगी, उसकी सदगति ही होगी, दुर्गति कभी नहीं हो सकती। और इस प्रकार से एक बार एक भक्त प्रयाग वाला वो नवद्वीप में जाता है और प्रयाग में यह वार्ता फैल जाती है कि किस प्रकार से छोटे हरिदास ने प्रयाग के त्रिवेणी संगम में आत्महत्या की है। वह समाचार लेके एक भक्त नवद्वीप जाते हैं और नवद्वीप में जब यह समाचार शिवास आदि सारे भक्त सुनते हैं वो परेशान हो जाते हैं। और अगले साल जब वो रथ यात्रा के लिए आए थे तब श्रीवास महाप्रभु से पूछता है, हरिदास कहाँ, यदि श्रीवास पूछिला स्वकर्म फल भुक्पुमान, प्रभु उत्तर दिला। श्रीवास पूछते हैं ऐसे ही, महाप्रभु हरिदास कहाँ है, छोटा हरिदास कहाँ है। महाप्रभु उत्तर क्या देते हैं, हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल भुगतना होता है। इस प्रकार से महाप्रभु उत्तर देते हैं केवल, बाकी कोई समझ नहीं पाता है। सुनी प्रभु हासी कहे सुप्रसन्न चित्त, प्रकृति दर्शन कहले यही प्रायश्चित्त। तो महाप्रभु जो है वो इस प्रायश्चित्त को स्वीकृति देते हैं। स्वरूप दामोदर और आदि सारे भक्त विचार करते हैं कि त्रिवेणी संगम में गया था, उसको जो है वो सदगति मिली होगी। और इस प्रकार से चैतन्य लीला जो है वो कितनी गंभीर है कोई समझ नहीं सकता। आपन्य कारुण्य लोके वैराग्य शिक्षण, स्वभक्तेर गाढ़ अनुराग प्रकटीकरण। अपनी करुणा महाप्रभु किस प्रकार से अपने भक्तों को ऊपर करते हैं और स्वभक्तेर गाढ़ अनुराग, अपने भक्त के प्रति गाढ़ अनुराग है महाप्रभु का, क्योंकि उनको प्रयोग करके वो क्या करते हैं, लोके वैराग्य शिक्षण, दूसरे लोगों को वैराग्य की शिक्षा प्रदान करते हैं। तीर्थेर महिमानी जो भक्ते आत्मसात, एक लीलाए करें प्रभु कार्य पांच सात। तीर्थ की महिमा भी सुनाते हैं कि तीर्थ में कोई यदि व्यक्ति अपना देह का त्याग करता है तो उसे अच्छी सदगति प्राप्त हो सकती है। और निज भक्ते आत्मसात, अपने भक्त को वो कभी त्याग नहीं करते, देह त्याग करने के उपरांत भी उन्होंने उसकी सेवा स्वीकार की। एक लीलाए करेन प्रभु कार्य पांच सात, पांच सात कार्य महाप्रभु अपनी एक लीला को प्रदर्शन करके कराते है। मधुर चैतन्य लीला समुद्र गंभीर, लोके नाही भुजे भुजे सेई भक्त धीर। महाप्रभु की लीला जो है इस प्रकार से समुद्र गंभीर, समुद्र जैसा गहराई में कितना गंभीर होता है उस प्रकार से महाप्रभु की लीला बहुत गंभीर है, साधारण व्यक्ति इन्हें समझ नहीं सकता। लेकिन एक भक्त अपनी भक्ति के बल पर महाप्रभु की लीलाओं को अच्छे से समझ सकता है। तो जब कविराज गोस्वामी कहते हैं कि एक लीला एक और इन प्रभु कार्य पांच सात, पांच सात कार्य महाप्रभु अपने लीला से साध्य कर सकते हैं। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं ये सात कारण जिनकी वजह से ये छोटा हरिदास इसका लीला महाप्रभु ने किया, या छोटा हरिदास से हम लोग सात शिक्षाएं ले सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सात शिक्षाएं ली है और सातों को श्रील प्रभुपाद जी ने इस अध्याय के अंत में लिख के हमें बताया है। और आप जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने सातों शिक्षाओं को अंग्रेजी और हिंदी भाषा में जो है वो पीडीएफ के रूप में रख रखा है, आप इसे डाउनलोड करके समझ सकते हैं। तो सबसे पहली शिक्षा सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृपा के अवतार है, और यदि कोई भक्त होगा जो इस प्रकार से प्रकृति संभाषण मतलब अवैध स्त्री संबंध रखता, ये उदाहरण लेके, और ये नहीं हो और उनका नर्क में पतन नहीं हो, इसलिए महाप्रभु ने ये लीला की। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु नेतृत्व कर रहे थे और सबसे ऊंचा आदर्श वो स्थापित करना चाहते थे इस लीला के द्वारा। तीसरी शिक्षा, सन्यास आश्रम का कितनी दृढ़ता से पालन एक व्यक्ति ने करना चाहिए वो महाप्रभु इस लीला से दर्शाना चाहते थे। चौथा, भक्ति के नियमों का कोई यदि कठोरता से पालन नहीं करता है तो उसके जीवन में कितना उत्पात मच सकता है ये यहां पर दिखाया। और एक भक्त का चरित्र हमेशा आदर्श होना चाहिए, यह इस लीला से महाप्रभु प्रदर्शित करना चाहते थे। पांचवा, चैतन्य महाप्रभु ने दंड देके अपनी कृपा ही प्रदर्शित की है और उसके अपराध को उन्होंने सुधार किया है। चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध भक्त यदि किसी व्यक्ति को बनना है तो सारे प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का उसे त्याग करना होगा। यदि महाप्रभु की चरणों की कृपा उसे प्राप्त करनी है तो ये ऊंची शिक्षा महाप्रभु प्रदान किए। छठी शिक्षा, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन या अन्य कोई तीर्थ स्थल में जो भी कोई व्यक्ति अपना शरीर त्याग देता है उसे सदगति निश्चित रूप से प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से धाम में शरीर त्याग करने का महिमा वो भी इस लीला से प्रस्तुत किया गया है। और सातवीं शिक्षा, यद्यपि भक्त का भक्ति मार्ग पर चलते हुए पतन हो सकता है लेकिन महाप्रभु की कृपा से उसे भगवत धाम जाने का रास्ता सदैव खुला ही रहता है, यह भी इस शिक्षा से महाप्रभु ने दर्शाया। क्योंकि उसे गंधर्व का शरीर प्राप्त हुआ और महाप्रभु ने उस रूप में उसकी सेवा का स्वीकार किया। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, ये कविराज गोस्वामी कहते हैं कि प्रभु कार्य करे पांच सात कार्य एक साथ करते थे, और सरस्वती ठाकुर ने वो शब्द लिया सात और सात शिक्षाएं हमें दी है। तो इस प्रकार से जो है वो ये अध्याय हमारा समाप्त हो जाता है। हमारा तीसरा अध्याय है हरिदास ठाकुर इनकी महिमा। तो हम लोग उस अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं आज, लेकिन हरिदास ठाकुर की महिमा बताने से पहले एक छोटा सा वृत्तांत और कविराज गोस्वामी सुना देते हैं। तो हम लोग केवल वो छोटा वृत्तांत देखेंगे और हरिदास ठाकुर की महिमा का गान हम लोग कल करेंगे, क्योंकि वो अध्याय थोड़ा बड़ा है, उस अध्याय को समय लगने वाला है, इसलिए हम लोग उसमें से जो थोड़ा एक 50 श्लोक है उनकी चर्चा हम लोग आज कर लेते हैं। तो कविराज गोस्वामी बताते हैं छोटा सा वृत्तांत। पुरुषोत्तम में एक उड़िया ब्राह्मण कुमार, पितृशून्य, महासुंदर, मृदु व्यवहार। पुरुषोत्तम पुरी जगन्नाथपुरी में एक छोटा सा बालक रहता था, ब्राह्मण कुमार, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ था। उसके गुण बताते हैं, पितृशून्य, उसके पिता का वध हो गया था, देहत्याग किया था उन्होंने, पिता नहीं थे। महासुंदर, अतीव सुंदर थे, और मृदु व्यवहार, व्यवहार में बहुत कुलीन और सुशील थे। महाप्रभु को हमेशा वो मिलने के लिए आया करते थे, नमस्कार किया करते थे, और महाप्रभु की भी उनके ऊपर बहुत प्रीति जुड़ गई थी और उसे महाप्रभु से मिले बिना नहीं रहा जाता था। प्रभु ते तार प्रीति, प्रभु दया करे, दामोदर तार प्रीति सही तेना पारे। महाप्रभु की प्रीति उस बालक के ऊपर थी, लेकिन जो दामोदर पंडित थे उनको वो प्रीति सही तेना पारे, सहन नहीं होती थी। क्यों सहन नहीं होती थी वो तो आगे बताया जाएगा, लेकिन दामोदर पंडित को ये अच्छा नहीं लगता था कि ये बालक बार 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 आके महाप्रभु से मिले, महाप्रभु को परेशान करे, और महाप्रभु भी उसके ऊपर प्रेम जता रहे। क्यों? क्योंकि वो तो एक विधवा का बेटा है और लोग क्या सोचेंगे। इस दृष्टि से दामोदर उस बालक को कहा कि देखो यहां पर आने का नहीं, लेकिन फिर भी वो बालक हर बार प्रताड़ना करने के बावजूद महाप्रभु को मिलने के लिए सदैव आया करता था, क्योंकि महाप्रभु के दर्शन के बिना वो रह नहीं पाता था। नित्य आई से प्रभु तारे करे महाप्रीत, यहाँ प्रीति तहा आई से बालके रीत। वो नित्य रूप से आता था और महाप्रभु की कृपा प्राप्त करता था। महाप्रभु भी उनके ऊपर बहुत प्रीति दर्शाते थे। और कविराज गोस्वामी एक सिद्धांत बताते हैं, यहाँ प्रति तहां आई से बालक रीत, जहां पर भी प्रेम मिल जाता है छोटे बच्चे स्वाभाविक वहां पर जाते हैं। हम लोग भी देखते हैं कि जहां पर आप थोड़ा प्रेम जता दो छोटे बच्चों को, तो छोटे बच्चे तुरंत आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उनकी तरफ जो है वो जाते हैं। दामोदर पंडित बहुत दुखी हो जाते हैं और वो बालक को भी समझाते हैं कि यहाँ पर नहीं आया कर, लेकिन फिर भी जो है वो बालक आया ही करता था। एक दिन की बात है, वो बालक महाप्रभु से मिलने आता है, महाप्रभु के साथ वार्तालाप करता है। महाप्रभु भी उसे बहुत प्रीति जताते हैं और समाचार लेते हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है कि नहीं, इस प्रकार से समाचार ले रहे होंगे महाप्रभु। दामोदर पंडित देख रहे होते कि ये बालक आया हुआ है, तो जैसे ही वो बालक चला जाता है वहां से, दामोदर पंडित अभी गुस्से में महाप्रभु के पास आ जाते हैं। क्या कहते हैं, अन्य उपदेश पंडित कहे गोसाई रठाई, गोसाई गोसाई ए बे जानीमु गोसाई, आप तो बड़े सन्यासी के रूप में यहाँ पर रहते हैं और सारे लोगों को उपदेश करते हैं, आज हम देखते हैं कैसे आप अपना बर्ताव और अपनी वर्तणूक कैसे करते हैं। सब लोगों को तो उपदेश दे रहे हैं गोसाई, आज हम देखते हैं कैसे गोसाई होके प्रस्तुत हो रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं कि भाई ऐसी ऊटपटांग बातें मत कर, ठीक ठीक बता क्या कहना चाहता है। ये तो आप कह रहे कि क्या कह रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दामोदर पंडित कहते हैं, आप तो स्वतंत्र ईश्वर हो, आप कुछ भी कर सकते हो, हम कौन होते हैं बोलने वाले। स्वच्छंदे आचार कर के पारे बलिते, मुखे मुखर जगतेर मुख पार अच्छा दीते। आप स्वच्छंद आचार कर सकते हैं, आप कुछ भी करने में समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं, के पारे बलिते कौन आपको कुछ बोल सकता है, लेकिन मुखर जगतेर मुख पारा अच्छा दीते, कि जो लोग इतनी वार्ता करेंगे, लोग बोलेंगे, मुखर मतलब वाचाल लोग, जो इस जगत में कितने सारे लोग हैं जो बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, वो इतनी बड़बड़ करेंगे, उनके हरेक के मुख को कौन, कोई आप हाथ से उनके मुख बंद कर सकते हैं क्या? जरा विचार करो, ये एक ब्राह्मणी का पुत्र है, उसके पति नहीं है, और आप उस बालक के प्रति प्रेम जता रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे? हालांकि ठीक है वो जो महिला है वो ब्राह्मणी, वो सती, वो पतिव्रता थी, लेकिन उसका एक दोष है, यद्यपि ब्राह्मणी से ही तपस्विनी सती तथापि ताहर दोष सुंदरी युवती। क्या है वो, यद्यपि वो ब्राह्मणी है, तपस्विनी है, सती है, पतिव्रता है, लेकिन अभी उसके पति नहीं है, लेकिन उसका एक दोष है। क्या है दोष? सुंदरी, वो सुंदर है, और युवती, वो युवा है। और आप भी देखो, तुम्ही तो परम युवा परम सुंदर, लोकेरा काना काणी बाते देह अवसर। आप भी कितने सुंदर है, परम युवा है, लोगों को काना काणी काना फूसी करने के लिए आप अवसर क्यों प्रदान कर रहे हैं? लोग बोलेंगे देखो ये महाप्रभु सन्यासी बन के घूम रहे हैं, लेकिन छोटे बालक के ऊपर प्रेम कर रहे हैं, और वो भी एक विधवा के, वो भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, जरूर दाल में कुछ काला होगा, इस प्रकार से लोग बात करेंगे। छे 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 महाप्रभु, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महाप्रभु अंदर से बहुत संतोष हो जाते हैं और अंदर ही अंदर सोचने लगते है, इहारे कहिए शुद्ध प्रेमेर तरंग, दामोदर सम मोर नाही अंतरंग। इसे प्रेम कहते हैं, तुरंत ठीक कर देता है मेरे व्यवहार को भी, मैं इस दामोदर जैसा दूसरा मेरा अंतरंग संग और कोई नहीं हो सकता। हमारी बात विपरीत होती है, यदि कोई हमें ठीक करता है तो हमें वो सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगता है कि कौन होता है ये ठीक करने वाला, लेकिन महाप्रभु अपने बर्ताव से दिखा रहे हैं कि हमें यदि कोई ठीक करना चाहे तो उसे हमारा सबसे अंतरंग मित्र मानना चाहिए। दामोदर सम मोर नाही अंतरंग, दूसरा कोई मेरा अंतरंग मित्र नहीं है दामोदर जैसा, जो मुझे मुझे जो स्पष्ट रूप से कहे और मुझे शिक्षा दे। इस प्रकार से लीला होने के बाद महाप्रभु एक दिन अचानक दामोदर को बुला लेते हैं और दामोदर को कहते हैं कि दामोदर आपको नदिया जाना है, नवदीप में जाना है, और मेरी माँ के पास आपको रहना है। तोवा मिना तहार रक्षक नहीं देखी आन, आमा के याते तुम्हें कैला सावधान। आपके बिना दूसरा कोई रक्षक मुझे नहीं दिखता है, आप तो मुझे भी सावधान करके ठीक करा सकते हैं, आप में इतनी शक्ति है, आप वहां पर जाइए और मेरी माँ के पास रहिए, उनकी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप निरपेक्ष है और निरपेक्ष होकर ही धर्म की स्थापना हो सकती है, इसलिए आप नवद्वीप जाइए। आमा होइते ये ना है से तोमा होइते होय, आमारे करीला दंड आन केबा होय। जो मुझसे नहीं हो सकता वो आप कर सकते हैं। आप तो मुझे भी दंड दे सकते हैं, आप मुझे भी सुधार सकते हैं, आप मुझे भी प्रताड़ित कर सकते हैं। दूसरों की तो बात ही छोड़ दो, आप चले जाओ सीधा। कहाँ चले जाओ? नवद्वीप चले जाओ। और अब जाके मेरी माँ के साथ रहो, उनकी चरणों में की सेवा करो, और वहां पर कोई यदि कुछ गलत कार्य कर रहा है तो उनको सुधारो। और इस प्रकार से मेरी माँ को जाना, वहां पर रहना, और बीच बीच में मेरे दर्शन के लिए यहाँ पर आया करो। सारे भक्त जो आते हैं पुरी से, उनके साथ आप आया करो, और मेरी माँ को कोटि कोटि प्रणाम अर्पण करना, और उन्हें बताना कि मैं वो जो भी भोग लगाती है मैं उसका ग्रहण करता हूँ, उसे स्वीकारता हूँ। पिछले ही मकर संक्रांति को उन्होंने कितने सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे, और जब वो भोग लगा रही थी भगवान को, उनके आंखों से आश्रु प्रवाहित हो रहे थे। काश निमाई यहाँ होता और मैं वहां पर आविर्भाव जताया। हमने देखा महाप्रभु आविर्भूत होते हैं, शचिर मंदिर है, तो मैं वहां पर आविर्भूत हुआ और सारे भोग का मैंने ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया था, लेकिन फिर भी अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। माँ को समझ में नहीं आया, उसे लगा कि मैं स्वप्न ही देख रही हूँ, थाली खाली हो गई है। और फिर आंसू पोंछने के पश्चात उन्होंने सब जाके देखा तो जो बनाए हुए भोजन थे वो ऐसे ही थे। उन्हें तुरंत सब जगह साफ सफाई की ईशान के द्वारा, और पुनः जो है उन्होंने भोग लगाया। तो आप उन्हें समझाओ, जो भी वो भोग अर्पण करती है मैं उनका अवश्य रूप से स्वीकार करता हूँ। तो जब भी वो मुझे याद करेगी वो मुझे वहां पर पाएगी। उन्हें कहो कि यह स्वप्न नहीं है, शचिनंदन वहां पर आके उन भोग को जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। यही मत बार बार करिए भोजन, तुम्हारा शुद्ध प्रेम मोरे करे आकर्षण। मैं बार बार वहां पर आता हूँ, भोजन करता हूँ। मैं तो जगन्नाथपुरी में उनकी आज्ञा से ही रह रहा हूँ, उन्हें बताना, और मैं उनके प्रेम के द्वारा हमेशा आकृष्ट हूँ और मेरा चित्त हमेशा उनके चरणों में रहता है, ऐसा आप उन्हें बता देना। और इस प्रकार से महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से सारा प्रसाद मंगवाते हैं, और अपनी माँ के लिए खास करके, और अन्य सारे भक्त अद्वैताचार्य श्रीवास ठाकुर शिवानंद सेन सबके लिए अलग 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 पृथक पृथक जो है वो बांध कर प्रसाद उनके साथ भेजते हैं। और सारा प्रसाद लेके दामोदर पंडित अभी नवद्वीप चले जाते हैं, और नवद्वीप नदिया में वहां पर वो माता के चरणों में रहे, माता को प्रणाम बताया महाप्रभु का, और सारे भक्त वहां पर जो है वो अभी सहम गए, क्योंकि अभी दामोदर वहां पर रुक रहे थे। दामोदर आगे स्वातंत्र ना हो यो कहार, तार भय सबे लोग सबे करे संकोच व्यवहार। सारे लोग अभी भयभीत थे क्योंकि दामोदर थे, और संकोच पूर्ण उनका जो है वो व्यवहार था। प्रभु गणे यार देखे अल्प मर्यादा लंघन, वाक्य दंड करी करे मर्यादा स्थापन। महाप्रभु के जो भक्त वहां पर थे वो दामोदर देखते, यदि कोई भी थोड़ा सा भी अल्प मर्यादा लंघन, थोड़ी भी मर्यादा का यदि कोई लंघन करता, थोड़ा भी भक्ति के मार्ग से विचलित हो जाता, वाक्य दंड करी करे मर्यादा स्थापन, उन्हें वो प्रताड़ित करते दामोदर पंडित, और वो उन्हें ठीक करते, ठीक रास्ते पे लाते और मर्यादा की पुनः स्थापना कर देते थे। इस प्रकार से जो है वो उनका, वो थोड़े स्पष्ट वक्ता शायद रहेंगे, और वो ठीक कर देते थे। जब भी कोई इस प्रकार से मर्यादा का लंघन करता तो मर्यादा स्थापन करने के लिए तुरंत वहां पर वो डांट देते, और सारे भक्तों का वहां पर जो है वो, कोई अभी मर्यादा लंघन नहीं कर रहा था, सारे भक्त ठीक से भक्ति में लगे हुए थे, क्योंकि दामोदर पंडित वहां पर थे और उनके सामने किसी का चलता नहीं था, सब लोग, क्योंकि महाप्रभु स्वयं उनसे जो है वो डरते थे। तो इस प्रकार से दामोदर पंडित अभी जगह नवद्वीप में निवास किए, हालांकि बाद में आगे चल के वो पुनः जगन्नाथपुरी में आ जाते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए वो नवद्वीप में निवास करे। एत कहिला दामोदरेर वाक्य दंड, यहार श्रवणे आगे भागे अज्ञान पाषंड। एत कहिला दामोदरेर वाक्य दंड, इस प्रकार से मैंने दामोदर का वाक्य दंड, मतलब अपने वाणी के द्वारा दूसरों को दंड देना, ये मैंने कहा है, यहार श्रवणे भागे अज्ञान पाषंड, सारी नास्तिकता और सारा अज्ञान जो भी कोई व्यक्ति सुन लेता है उससे दूर चला जाता है। तो क्योंकि हमने अभी ये सुना हुआ है, हमारा भी सारा अज्ञान जो है वो दूर चला जाएगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे। एक दिन महाप्रभु अचानक हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए वहां पर जाते हैं। एक दिन प्रभु हरिदासेर मिलीला, तहां लैया गोष्ठी करी, तहां रे पूछिला। एक दिन महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलते हैं और हरिदास ठाकुर से प्रश्न पूछने लगते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं हरिदास ठाकुर को महाप्रभु? और हरिदास ठाकुर इनकी महिमा क्या प्रदर्शित करने वाले हैं कविराज गोस्वामी, इसकी चर्चा यदि आपको सुनने हैं तो आप हमें मिलिए कल ठीक शाम को 5:30 बजे। अभी समय है हमारा आज के प्रश्न का। जो प्रश्न कई भक्त कहे, थोड़ा गूगली था, कुछ भक्त कहे, इसका ऑप्शन में जवाब ही आपने नहीं दिया था तो गलत ऑप्शन, इस प्रकार से कुछ लोग कह रहे थे। तो प्रश्न था कि शची देवी के शरीर में भगवान श्री कृष्ण ने किस महीने और वर्ष में प्रवेश किया था, कौन से महीने और कौन से वर्ष में? तो हम सब लोग महाप्रभु का जन्म वर्ष तो जानते हैं। अब ये जन्म वर्ष कविराज गोस्वामी एक दृष्टिकोण से बताते हैं, इसलिए हमने कहा है आपको, आपको श्लोक और भाषांतर दोनों पढ़ना है परीक्षा के लिए। केवल श्लोक पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा, केवल भाषांतर पढ़ेंगे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि ठीक से समझना है। क्योंकि वैदिक सभ्यता के अनुसार जो है वो साल बताया जाता है शके, तो 1407 शक इसमें महाप्रभु का जो है वो जन्म बताया गया है, और वैदिक कैलकुलेशन वो है, और श्रील प्रभुपाद जी भाषांतर में मॉडर्न कैलकुलेशन करते हैं और बताते हैं कि 1486 में महाप्रभु का जन्म हुआ था, 1486 में। तो महाप्रभु का जन्म यदि 1486 में हुआ है तो प्रश्न है कि जन्म कब हुआ, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि कृष्ण उनके गर्भ में कब प्रवेश किए, तो वो तो 9 महीने से अधिक कालावधि तक गर्भ में रहे थे। यदि आपने ठीक से पढ़ा होगा आदि लीला का अध्याय 13, तो आपको उसमें समझ में आया होगा कि कितने समय तक महाप्रभु गर्भ में रुके थे। तो इसलिए हमने इंग्लिश कैलेंडर के महीने नहीं दिए हैं, तो साल हमने दिए हुए इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, लेकिन महीने दिए हुए हैं वैदिक कैलेंडर के अनुसार, तो माघ और फाल्गुन। तो महाप्रभु का जन्म फाल्गुन पूर्णिमा को हुआ था और गर्भ में प्रवेश जो हुआ था वो माघ महीने में हुआ था, 1 साल पूर्व। तो इसका सही जवाब होता है ए, माघ महीना 1485। तो इस प्रकार से जो है आपको अपना दिमाग से भी सोचना है, और जो पढ़ा है और पूरा अध्याय यदि आपने पढ़ा है ठीक से, तो ही आपका आपका ये जो है वह सही जवाब आ सकता है। तो आप लगे रहिए इस प्रकार से, ठीक से अध्ययन करते रहिए। आनंद होता है कि कई सारे भक्त कई सारे प्रश्न भी पूछ रहे हैं और ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं आदि लीला का। तो इस प्रकार से आप आदि लीला को ध्यान से पढ़ते रहिए, क्योंकि संबंध ज्ञान और महाप्रभु के बारे में और अच्छे से ज्ञान उसमें प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हरिनाम चिंतामणि में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जितना हमारा संबंध ज्ञान पक्का हो जाएगा उतना हम लोग भगवान को अच्छे से पुकार सकते हैं और उनका नाम ले सकते हैं। क्योंकि कली कालेर धर्म नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन कलियुग का धर्म है, लेकिन जब हम तीव्रता से पुकारेंगे भगवान को तभी जाके वो फलित हो सकता है। और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हम लोग अच्छे से तब पुकार सकते हैं जब भगवान की भगवत्ता का ज्ञान हमें हो जाता है, और यह संबंध ज्ञान के द्वारा ही स्थापित हो सकता है। तो यह संबंध ज्ञान आदि लीला में प्रचुर मात्रा में दिया गया है, तो इसलिए यह संबंध ज्ञान आदि लीला का आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना आपका हरिनाम भी उतना अच्छे से होगा, यह उसका फल होगा। और जितना हरिनाम अच्छे से होगा उतना आप भगवत धाम या महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने आप को पात्र बना रहे हैं, ऐसा ही आप इसे समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की। जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की। जय श्रील प्रभुपाद की। जय